नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्यसत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ड्स के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ड्स के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।